हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज की भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष वक्ता असित कृष्ण प्रभु। हरी प्रभु जी पहली बार इस पंजाबी भाग हमारे केंद्र में आ रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। आप इस ग्रेस असित कृष्ण प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में पिछले 25 वर्षों से ज्यादा सेवा कर रहे हैं। और विशेष बात यह है कि लगभग पिछले 23-24 वर्षों से लगातार प्रभु जी गोवर्धन में जो भक्ति वेदांत आश्रम है उनके इंचार्ज है। ये कोई साधारण बात नहीं है। ब्रज में पिछले 24 साल से रह रहे हैं, पूरे ब्रजवासी हैं प्रभु जी, और विशेष रूप से जाने जाते हैं गोवर्धन के परिक्रमा के लिए। पता नहीं कितनी काउंटलेस परिक्रमा प्रभु जी कर चुके हैं और बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, उनको दिखाते हैं अंदर अंतरंग गोवर्धन के हिस्सों में, आपको ले जाएंगे, सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाएंगे। और बहुत बड़े विद्वान गोवर्धन के तलहटी में बैठ के भक्ति वेदांत आश्रम में सभी शास्त्रों का गुढ़ता से अध्ययन। और दूसरी विशेषता प्रभु जी की पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भक्ति वेदांत आश्रम है, विशेषकर कार्तिक के महीने में बहुत से महाराज लोग सन्यासी वरिष्ठ प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं, तो प्रभु जी पूरे हृदय से सबकी सेवा करने का प्रभु जी को मौका मिलता है। और पूरे वर्ष में कोई भी अगर भक्त लोग वहां जाते हैं, प्रभु जी पूरे हृदय से, लेकिन हमारा भी अनुभव है हमारे भक्तों का, पूरे हृदय से उनको स्वागत करते हैं और उनके भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। और बहुत ही जल्द लगभग एक साल के अंदर ही आप प्रभु जी के एक नए वेश में नए नाम से जानेंगे। यहाँ इनका बहुत जल्दी संन्यास भी होने वाला है अगले वर्ष में। और संन्यास में कैंडिडेट हैं तो उनको वर्ष में 2 महीने बाहर प्रीचिंग के लिए जाना पड़ता है, और इनको जो असाइनमेंट मिला वो इतना आसान नहीं है। वर्ष में 2 महीने, कल या परसों ये जा रहे हैं चाइना में, सिंगापुर और थाईलैंड इनका एरिया, वहां जाके प्रचार करते हैं। तो बहुत ही विशेष विभूति हैं जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। तो कृपया करके ध्यान पूर्वक मोबाइल फोन ऑफ करके प्रभु जी के मुखारविंद से भागवत श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करति वाचा लोकं लङ्घयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणी श्रीपरमानन्दमाधवः।
श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 27। विपश्चित प्राण मनोधियात्मन अथेन्द्रियाभासमनीन्द्रब्रणम् छाया तपो यत्र न गृध्रपक्ष्यो तमाक्षरं खं त्रिजुगं व्रजामहे। विपश्चितं सर्वज्ञं को प्राण, किस तरह प्राण कार्यशील है, मन, किस तरह मन कार्यशील है। धिया किस तरह बुद्धि कार्यशील है। आत्मानं सारे जीवों का, अर्थ इंद्रिय विषय, इंद्रिया इंद्रियां, आभासं ज्ञान, अनिंद्रम सदैव जागृत तथा अज्ञान से मुक्त, अव्रणम सुख तथा दुख से प्रभावित होने वाले भौतिक शरीर के बिना, छाया अतपौ अज्ञान से दुखी समस्त लोगों के आश्रय, यत्रा यहां ना नहीं, गुद्रपक्षो किसी भी जीव का पक्षपात, तम उसको, अक्षरम अच्युत, खाम आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त, त्रिजुगम तीन युगों, सत्य त्रेता तथा द्वापर में छह ऐश्वर्य समेत प्रकट होकर, ब्रजामहे में शरण ग्रहण करता। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य इज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। भगवान प्रत्येक तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वे हर वस्तु के प्रकाशक हैं और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वे पक्षपात तथा भौतिकवादी विद्या के अज्ञान से मुक्त हैं। अतएव मैं उन भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य सर्वव्यापक तथा आकाश के समान विशाल हैं और तीनों युगों सत्य त्रेता तथा द्वापर में अपनी सर्व ऐश्वर्य समेत प्रकट होते हैं। तात्पर्य श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यन्मादस्य यतः अन्यात् इतरश्चार्थ अविज्ञः। भगवान समस्त उद्भावों के उद्गम हैं और वे अपनी सृष्टि के भीतर होने वाले प्रत्येक कार्यकलापों के विषय में प्रत्येक तथा अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। अतः भगवान को यहाँ पर विपश्चित कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है समस्त ज्ञान से पूर्ण या सब कुछ जानने वाला। भगवान परमात्मा है और वे सारे जीवों तथा उनकी इंद्रियों के विषय में सब कुछ जानते हैं। इस श्लोक में अनिंद्रम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है सदैव जागरूक तथा अज्ञान से रहित। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मतः स्मृति ज्ञान अपोहनंच। भगवान ही हर एक को बुद्धि प्रदान करते हैं और उनमें विस्मृति उत्पन्न होती है। प्राणियों की संख्या करोड़ों करोड़ों में है और भगवान उनके निर्देश देते हैं, उनको निर्देश देते हैं। अतएव उन्हें सोने के लिए समय भी नहीं हो रहता और वे हमारी कार्यकलापों से कभी भी अनभिज्ञ नहीं रहते। वे हर एक घटना के साक्षी हैं। हम प्रतिक्षण जो भी कर रहे हैं उसे वे देखते रहते हैं। भगवान कर्म से उत्पन्न शरीर से प्रच्छन्न नहीं रहते। हमारे शरीर हमारे विगत कर्मों के फल स्वरूप निर्मित होते हैं। कर्मणार दैव नेत्रेण, किंतु भगवान के भौतिक शरीर नहीं होता, अतएव उनमें अविद्या नहीं रहती, वे सोते नहीं अपितु सदैव सतर्क तथा जागृत रहते हैं। भगवान को त्रिजुग कहा गया है क्योंकि वे सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर युग में नाना रूप में प्रकट होते होते प्रकट हुए थे, किंतु जब वे कलियुग में अवतरित हुए तो उन्होंने अपने आप को कभी भगवान घोषित नहीं किया। कृष्ण बन तिसा कृष्ण संग पंगस्त्र पार्षदम, भगवान कलियुग में वक्तों के रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह यद्यपि वे कृष्ण होते हैं किंतु वे भक्त की भांति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, फिर भी श्रीमद् भागवत में संस्तुति करती है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जयंति ही सुमेधसः, श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं है अपितु सुनहला है, भगवान है, उनके साथ नित्यानंद अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं। जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे संकीर्तन यज्ञ द्वारा इन भगवान की पूजा करते हैं। इस अवतार में भगवान अपने आप को परमेश्वर कहकर घोषित नहीं करते, अतः वे त्रिजु कहलाते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुर्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वोपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसागणललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मैं पहली बार इधर आया, यहाँ पर आया, मुझे बहुत आनंद आया। आप लोग का कीर्तन और विशेष करके विग्रह भी बहुत सुंदर, पूजा अर्चना भी बहुत सुंदर होती है। विग्रह से पता चलता है कैसे भक्त लोग कैसे हैं। जब गोपीनाथ विग्रह को लेकर के पुरी के राजा जा रहे थे, पुरी में जाने पुरी को ले जा रहे थे, वो बालेश्वर जहां पर अभी आप लोग रेमुना गए होंगे, तो वहां उस वातावरण को देख करके गोपीनाथ रुक गए, बोले नहीं मैं यही रहूंगा। यद्यपि राजा का इच्छा था, उनके रानी का भी इच्छा था पुरी में रखने के लिए, लेकिन बोले नहीं यहीं पर मुझे मंदिर बना लीजिए, मैं यहीं रहूंगा। तो भगवान भक्तों की इच्छा से रह जाते हैं, तो इसलिए कभी कभी और ऐसे अभक्तों के साथ अभक्त जहां होते हैं वहां भगवान होते हुए भी भगवान नहीं रहते। हिरण्यकशिप वैकुंठ गया, उनको भगवान मिला नहीं, हम लोग जानते हैं। बोला वैकुंठ, बोला भगवान भाग्य है मुझे देख करके। सर ये आरंभ करने का ये नहीं था, लेकिन तो ये कहने का तात्पर्य है। ये श्लोक भी इस तरीका का है, यहां पर भगवान को विपश्चित कहा गया है। देवता लोग प्रार्थना करते हैं और हम लोग देखते हैं भगवान जय श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव राधा राधिका रमन जी की जय, गौनिताय की जय, प्रभुपाद की जय। देवता लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, और हम लोग जानते हैं भगवान जितनी इस धरती पर जितने बार अवतार लिए आए, स्वयं प्रार्थनाएं में आए, ज्यादातर प्रार्थनाएं, और बहुत कुछ तपस्या और दूसरी विधि से आए, लेकिन ज्यादातर प्रार्थना से आए। कोई भगवान को लगन लगा करके निष्ठापूर्वक कोई प्रार्थना करे, और आप लोग सुने होंगे अभी अभी कौन प्रार्थना किया था भगवान दौड़ के आगे, गजराज ने। अभी अभी ये चैप्टर खत्म हो शेष हुआ, गजराज ने, ये कोई कपोल कल्पित कहानी नहीं, लोग कभी कभी ऐसे बोलते हैं, नहीं नहीं भगवान उस युग में आते थे, अभी भगवान नहीं आते, ऐसा नहीं है। भगवान हर जीव के हृदय में रहते हैं, यहां पर इसलिए देवता लोग बोलते हैं भगवान विपश्चित सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, कहां पर क्या घटित होता है वो सब जानते हैं, और हर समय जागृत रहते हैं। भौतिक जगत में ऐसा वस्तु नहीं है जो सब कुछ हर समय जागृत रहे, कुछ समय के लिए नष्ट हो जाता है आप जितने भी, और कुछ ऐसे परिस्थितियां आती हैं तो उस समय कार्य करना बंद कर देती है। आप देखिए कोई भी वस्तु को आप रखिए, चाहे सीसी कैमरा लगाइए, कुछ लगाइए, लगा करके सोचते हैं हम पकड़ के रखेंगे सारे सारे कुछ, फिर भी समझ नहीं, रात में हो गया हम नहीं करता, रात में अच्छा से फोटो नहीं खींच सकता, कोई चोरी चोर आके चोरी करके ले जाते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमारा हर समय काम आने वाले हैं। भगवान जितने हमारा पास में है, और कोई जगत में ऐसा कोई इतना पास में नहीं है, हमारे हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में भगवान रहते हैं, और हर जगह में भगवान रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी भगवान बहुत दूर में रहते हैं। जब ये भौतिक जगत में भगवान आते हैं, लीला करते हैं, कभी 2000-3000 किलोमीटर दूर रहते हैं, फिर भी भगवान समझ जाते हैं। जब भगवान द्वारिका में थे, रुक्मिणी द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हुआ, भगवान समझ गए थे। तो इसलिए भगवान हर चीज को जानते हैं, खाली प्रेजेंट जीवन का नहीं है, भगवान प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर चीज को जानते हैं। ये समझना थोड़ा सा आज के लोग के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन जो भक्ति से या आचार्यों से सुना है तो समझ सकता है। कब आज तो लोग विश्वास नहीं करते कि भगवान का हम क्यों विश्वास करें, ये सब विश्वास मत करियो। लोग ऐसे कभी कभी बोलते हैं विश्वास, हम जो बोलते हैं भगवान में विश्वास करो। अब मैं एक बार क्लास दे रहा था, उन्होंने एक विद्वान बोले भगवान में क्यों हम विश्वास करें, मैं बोले आपको तो विश्वास करना पड़ेगा, किसी चीज में विश्वास करना पड़ेगा ना, नहीं नहीं भगवान हम विश्वास नहीं करेंगे। मैं बोला आप कैसे आए, मैं बस में आया, तो आप बस को भी विश्वास करते हैं ना, आप बोलेंगे बस में अभी मैं चढ़ूंगा टायर फट जाएगा, बस वहीं पलट जाएगा, मर जाऊंगा, तो आप चढ़ेगा बस में, नहीं तो आप विश्वास किया ना बस मुझे ले जाएगा, इसलिए चलते हैं। तो आप ये से ऐसे वस्तुओं में आप विश्वास करते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते। लोग देखिए क्योंकि आज लोग उसी पर विश्वास करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं अंधा जैसा अंधे ही उपनीय मानम, एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखा रहा है। हम लोग बोले कि भगवान में विश्वास करो, लोग भगवान में विश्वास नहीं करें, आप भगवान भगवान मुझे मत बताइए। तो इसलिए जो विश्वास करता है और भगवान में विश्वास करता है तो ये विश्वास भक्ति से या भक्तों से आती है जिनमें ये विश्वास है। तो इसलिए यहां विपश्चित जो शब्द आया है, भगवान सर्वज्ञ है, सब जानते हैं, हम ऐसे गलती नहीं करने का कि हम कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी छुपा के कर लेते हैं भगवान को पता नहीं चलेगा। भगवान को सब कुछ पता चलता है, सब जानते हैं। इसलिए ये कभी भूल नहीं करने का हम छुपा के जाके दरवाजा बंद करके कुछ कर ले, ऐसा नहीं है। तो यहां देवताओं ने भगवान को जो प्रार्थना कर रहे हैं, और हम लोग देखे भगवान गजेंद्र के बुलाने पर भगवान आए हैं, और ऐसे बहुत सारे भक्त कोई भी भक्ति से भगवान को बुलाते हैं भगवान आते हैं। तो इसलिए आप जानते होंगे इस एक मन में कथा आता है, कभी कभी लोग ये सोचते नहीं, भक्त लोग भगवान कभी उस युग में आए थे, अभी भगवान शायद आएंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये तेलुगु या आंध्र प्रदेश की एक सच्ची घटना है। एक बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने, आप तो जानते हैं भक्त बाहर से लगते हैं बहुत सिंपल हैं कभी कभी, और लेकिन जो भक्ति में वो जो कहते हैं या करते हैं तो कभी कभी बाहर के दृष्टि से, बाहर तथा कथित विद्वान को समझ में नहीं आता। तो वो गजेंद्र के उपाख्यान उन्होंने लिख रहे थे अपने तेलुगु लैंग्वेज में, और लिखते समय उन्होंने ऐसे भाव में जब भगवान का चिंतन करके लिख रहे थे, भगवान जब गजेंद्र ने पुकारा, भगवान इतनी जल्दी से आए, आकर के जब पहुंच गए तो अपना सुदर्शन चक्र को भूल गए लाने के लिए। तो मतलब ऐसे लिख रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी जब लिखते हैं, जो साधु लिखते हैं तो वास्तविक वो लिखते नहीं, भगवान उनसे लिखवाते हैं। तो उन्होंने भाव से ये चीज लिख दिया, भगवान इतनी भक्त वत्सलता में दौड़े तो अपना सुदर्शन चक्र गदा सब भूल गए। और ऐसे तो शास्त्र में कहा गया है, और गरुड़ के ऊपर से कूद करके दौड़े भगवान, उन्होंने सोचा गरुड़ जी का जो स्पीडी है कम पड़ रहा है, हम जल्दी और जल्दी दौड़ करके गजेंद्र को रक्षा करने के लिए जाएंगे। भगवान तो सब जगह में है, भगवान तो वहीं से प्रकट हो सकते थे, लेकिन वहां से दौड़ के बैकुंठ से क्या आने का था। तो कभी कभी तो वो गांव के जो विद्वान थे तथाकथित बड़े बड़े विद्वान, तो उन्होंने उनका जो ये पढ़ा तो उन्होंने बहुत गाली दिए, भगवान ऐसे भूल जाते हैं सब कुछ, भगवान है वो कैसे भूल जाएंगे, इसलिए ऐसा लिटरेचर मत लिखो जो फेंको इसको। तो उन्होंने तो भक्त तो पूरे नम्र होते हैं, ऐसे ठीक है आप जो बोल रहे हैं ना, ऐसे जो मैं तो लिख रहा था भगवान जो प्रेरणा दिए इस चीज में लिख दिया। तो उन्होंने फिर जस्ट 2-3 दिन के बाद उन्होंने सुना हरे कृष्ण। तो जो विद्वान ये अपोज कर रहे थे उनके बेटा दो तीन बेटे वो लोग खेल रहे थे, कोई खेत खेत के पास खेल रहे थे। तो उन्होंने ये न्यूज आया, ये खबर आया, उनके बेटे खेलते खेलते कुएं में गिर गए, वहां कुआ था कुएं में गिर गए। तो उनको खबर आया कि तुम आपका बेटा कुएं में गिर गया, तो सब लोग भागे और कोई रस्सी लेके नहीं गया। कैसे? तो भगवान देखो पर्पसली सिखाते हैं, दिखाते हैं, कोई मानता नहीं, भगवान ये इस चीज को दिखाते हैं। तो वो जब जाके सब लोग पहुंच गए, सब लोग ताक रहे हैं कुएं में, वो पड़ा है और कैसे उनको निकाला जाए, तो कोई रस्सी आएगा। तो जो विद्वान थे उन्होंने तुरंत उनको रियलाइज हुआ, वास्तविक जब कोई अपना आदमी होता है तो रक्षा करने के लिए हम ऐसे भागते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तो भगवान ऐसे क्यों नहीं हो सकता भगवान। तो उन्होंने उनको ये, फिर वो रस्सी लेके आए, ये जो भक्त थे वो रस्सी लेके गए, फिर उन्होंने उनको कुएं से निकाला, तो वहीं से उन्होंने चरण पकड़ लिया। नहीं नहीं, वास्तविक भक्त जो बोलते हैं वास्तविक साधारण बात, क्योंकि भगवान का मन का ही बात बोलते हैं, क्योंकि सप्तम स्कंद भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नृसिंह सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सत्यम विधातु निजहूत्य भाषितम, भगवान सब जगह में है लेकिन भगवान एक खंब में एक पिलर में प्रकट हो गए। क्यों? सत्यम विधातुम निजहूत्य भाषितम, अपने अपना भूत्य का भाषित मतलब भाषण को कथा को रक्षा करने के लिए उन्होंने उसमें प्रकट हुए। आप बोल दीजिए और कोई बोल दीजिए यहां पर भगवान ने प्रकट हो जाए, तो भक्त बोल देता है तो वहां प्रकट हो गए। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जब यद्यपि सब जगह में भगवान है, वैक्तस्य चराचरस्य अखिलेषु चात्मनः, तो सारे जगह में भगवान है लेकिन वो अपने भक्त का बात को रक्षा करने के लिए सत्य करने के लिए उन्होंने खम में अग्रभूत हो गए। तो इसलिए भक्त जो बोलते हैं, यहां देवता स्वयं देवता बोलते हैं, ये कोई झूठ नहीं। और भगवान यहां पर ये तो बहुत बड़ी टॉपिक है, मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं। तो यहां त्रिजुगो कहा गया है, भगवान कलियुग में नहीं आते, ये तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ, भगवान चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान आए हैं। लेकिन वास्तविक भगवान को त्रिजुगो कहा गया है, सत्य त्रेता द्वापर। कलियुग में भगवान का क्षरण, चैतन्य महापुरुष जो आए थे ये क्षरण अवतार, ये छुप के भगवान आए थे। यहां जो कल्कि अवतार हैं ये पूर्ण अवतार नहीं है, कोई विशेष लोक के भीतर भगवान प्रवेश करते शक्ति प्रदान करते तब जाके होता है, लेकिन पूर्ण अवतार कलियुग में नहीं, इसलिए त्रिजुगो कहा गया है भगवान को। और जो भगवान, तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कलियुग हम लोग खास करके हम लोग बहुत सौभाग्यमान हैं, चैतन्य महाप्रभु आए 500 साल हुआ और उन्होंने ऐसे वैकुंठ का ऐसे प्रेम लाए, यहां पर कोई मतलब बहुत दिनों से इस चीज को दिया नहीं गया था। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो लाए हैं, भगवान स्वयं राधा रानी से प्रमिस किए थे, आप जैसे आप लोग हम लोग जानते हैं, जब भगवान रामचंद्र सीता देवी लक्ष्मण वनवास हुआ था उसमें जो लक्ष्मण जी बहुत बड़ी तलवार लेके साथ में जा रहे थे, रामायण में है आपको स्मरण होगा, तो तलवार को देख करके सीता देवी भयभीत हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी और भगवान रामचंद्र को एक कथा सुनाई थी, उन्होंने बोला था एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे उन्होंने पूरा अपने स्वधर्म पालन किया 100 साल तक, हम जानते हैं कोई अपना स्वधर्म 100 साल तक पालन करता है, 100 जीवन, सॉरी 100 जीवन, तो उसको इंद्र का पोस्ट मिलता है। तो इंद्र ने विचलित हो गया, और इंद्र विचलित हो करके वो जो राजा थे उनको केवल एक अच्छा से तलवार ला के दे दिया। तलवार ला के उनको बोला आप पकड़ो इसको थोड़ा सा, तो तलवार का प्रभाव से उनको पकड़ा, खाली तलवार को पकड़ा था, और उन्होंने देखा तलवार थोड़ा निकाल के देखा कैसे है, और थोड़ा सा काटा, और ऐसे 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 उस तलवार से बहुत कुछ उन्होंने काट दिया। तो केवल तलवार का प्रभाव से फिर उन्होंने गिर गया, वो फिर इंद्र बन नहीं पाए। इंद्र ने देखो एक तलवार दे करके कितने पत्थर भ्रष्ट करा दिए। तो सीता देवी का ये था ये, आप ये तलवार और बाण लेके जा रहे हैं, कभी क्या क्या करेंगे कोई ठिकाना नहीं, और क्या क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उनका डर था। तो भगवान तो आए हैं, स्वयं भगवान कृष्ण आए उनको रक्षा करने के लिए, वो जो बात को नहीं मैं और वो अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, भगवान ब्रज में जो लीला किए कोई अस्त्र पकड़े नहीं थे। यहां सढ़ा ईश्वरीय पुण्य भगवान जो भगवान है, तो उनका जो बल एक ऐश्वर्य है, भगवान जैसा बलवान संसार में कोई नहीं। भगवान अपना बाएं हाथ का बल कहां दिखाया? नहीं, बाएं हाथ का बल, हाँ गोवर्धन उठाए थे वो बाएं हाथ का, वो क्या छोटी उंगली उसको दिखाए थे, लेकिन बाएं हाथ कहां दिखाए थे बल? कैसी 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 दीवन को, जो कैसी निगलने के लिए आया भगवान ने अपनी बाएं हाथ में घुसा दिया। तो भगवान तो बहुत 4-5 साल की थे उम्र, और कितनी सुंदर सलोने पूरा सट उनका हाथ था, और उन्होंने ऐसे घुसा दिया किसी के मुख में, और किसी को क्या लगा? गरम गरम सरिया, गरम गरम रॉड जैसा घुस गया भीतर। वही देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यहां पर आया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भगवान हर चीज को जानते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, प्रत्यक्ष जैसे प्रहलाद महाराज के मां को तो भगवान प्रत्यक्ष ज्ञान दिया कयादु को, लेकिन कयादु भूल गए, प्रहलाद महाराज पकड़ लिए, समझ लिए ना। कयादु माता को तो बोला भगवान ज्ञान, मतलब नारद मुनि जो उपदेश दिए, तो कयादु भूल गए, लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ में रहकर के उनको सारे चीज को सुन लिए। तो ऐसा नहीं है कभी कोई प्रत्यक्ष भूल जाता है या परोक्ष को पकड़ लेता है, या परोक्ष भूल जाता है प्रत्यक्ष को पकड़ता है, तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान हर चीज को पकड़ते हैं। इसलिए देवता लोग ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हर चीज को भगवान पकड़ते हैं। तो इसलिए भगवान यहां पर जो दिखाए अपना ऐश्वर्य, बाएं हाथ का ऐश्वर्य, ये भगवान बलवान है, तो हर ऐश्वर्य में परिपूर्ण है। भगवान तो थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य अपना दिखाए, अपना होठों का बल दिखाया पुतना को मारने के लिए, 6 दिन का बच्चे थे, दूध भी अच्छा से नहीं पी सकते, लेकिन ये आचार्य लोग बोलते हैं भगवान ये जो 6 ऐश्वर्यों का जो दिखाया, थोड़ा थोड़ा झलक दिखाया, पूरा मात्रा में लेकिन नहीं दिखाया, थोड़ा सा झलक दिखाया। अपना दाहिने हाथ का बल कहां दिखाया? कंस के ऊपर, कंस को एक मारा खत्म। भगवान वहां पर अस्त्र शस्त्र कुछ पकड़े नहीं थे, मेरा कहने का ये है, लेकिन वही भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने कुछ अस्त्र नहीं पकड़ा, उन्होंने ऐसे अस्त्र पकड़ा। क्या अस्त्र पकड़ा था चैतन्य महाप्रभु? प्रेम, हरे कृष्ण महामंत्र, जो प्रेम उन्होंने पकड़ा था वो प्रेम में सबको डुबा दिया। तो ये प्रमाणित के ऐसे नहीं है अस्त्र शस्त्र पकड़ के जब जगाई महाराज को भागे चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु प्रार्थना किए कि तो सारे जगाई महाराज है, आप किसको मारेंगे? यहां तो सारे लोग कलयुग आप तो देखते हैं जगाई महाराज में भरे हुए हैं, जगाई महाराज से भी और नीचे हैं। आप चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बोलते हैं हम जगाई मधाई से, जगाई मधाई तो कम से कम स्टैंडर्ड उनका था, हम लोग जगाई मधाई से भी नीचे हैं। वो प्रमाण देते हैं जगाई मधाई से कैसे नीचे हैं। जगाई मधाई कोई नौकरी नहीं किए थे, लेकिन हम तो नौकरी किए, और कहां? जवन के अंदर में। तो इसीलिए जगाई मधाई से हम और नीचे, वो तो कम से कम नौकरी तो नहीं किए थे। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु बोले यहां पर आप ऐसे करेगा सबको मानना पड़ेगा, फिर इसको पूरी खत्म करना पड़ेगा, इसलिए आप इस चीज को मत करिए। तो जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु दिए, सबको प्लावित किए, और वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु लाए, एक ड्रॉप एक बूंद प्रेम के सामने संसार का हर कोई भी चीज ठिका। तो इसलिए वो जो प्रेम, आप लोग इतना नाच रहे थे ये कर रहे थे, क्या ये आनंद ब्रह्मा को भी मिलेगा नहीं? ब्रह्मा शिव जी को भी मिलेगा नहीं ऐसे प्रेम? लोग इतना आनंद से नाचते नहीं? जब प्रभुपाद जी पहले अमेरिका गए थे, उन्होंने हिप्पी को हैप्पी बना दिया, तो सब लोग वहां का अमेरिका का लोग देख करके ताजुब हो गए, हिप्पियों को हैप्पी बना दिए, असंभव कार्य। तो इसलिए वास्तविक हम लोग बहुत भाग्यवान है। तो महाप्रभु जो प्रेम लाए, कृष्ण जो प्रेम लाए, भगवान का प्रेम, तो ये वितरण करना जरूरी है। तो यहां पर त्रिजुग जो कहा गया है, प्रश्न के लिए कुछ समय रखना पड़ेगा टाइम। तो वास्तविक प्रेम कैसे, हम प्रेम को प्राप्त करेंगे? साध्य का वो न है, कृष्ण प्रेम का भी साध्य नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। शुद्ध रूप से हम श्रवण करेंगे अच्छा से, तो प्रेम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मन शुद्धि के लिए हमको जप करना जरूरी है। कलियुग में जो भगवान महाप्रभु लाए हैं मंत्र में, ऐसे हर युग में है, ऐसे नहीं आप सोचेंगे केवल कलियुग में है और दूसरे युग में नहीं है। यद्यपि हर युग का मंत्र अलग अलग है, सत्ययुग का भी मंत्र अलग था। त्रेता सत्ययुग का मंत्र आपको मालूम है? नहीं। नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परागति, नारायण परामुक्ति, ये सत्ययुग का। त्रेतायुग का राम नारायण अनंता मुकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंसारे हरि वैकुंठ वामन। द्वापर युग का हरे मुरारे मधुकैत भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे यज्ञे सुनारा यण कृष्ण विष्णु निराश्रयम्मा जगदीश रक्षे। कलियुग का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे हम वो वस्तु को जो भगवान नारायण भगवान कृष्ण जो करते थे, उसी चैतन्य महाप्रभु सुलभ कर दिए। इसलिए कोई भगवान का नाम प्रेम से लेता है, तो स्वयं प्रभुपाद जी आज से कितने साल पहले गए, और यही नाम, उनके नाम के ऊपर इतनी भरोसा था। इसलिए जो नाम में आश्रय लेना है, हम लोग वस्तुओं में आश्रय लेते हैं, जो तुच्छ चीज है, जो नश्वर है, भगवान के नाम में आश्रय नहीं लेते। हम कल नजरगढ़ में क्लास था, मैं बोल रहा था, तो वस्तुओं में हम इतनी आकृष्ट होते हैं, आसक्त होते हैं, और उसी में पूरी आश्रय लेते हैं, लेकिन नाम में आश्रय नहीं लेते। फल क्या होता है? वस्तु भी नष्ट होता है, हमारा शरीर भी नष्ट होता है, वस्तु हमको बचा नहीं पाता। लेकिन भगवान जो नाम नाम से अभिन्न है, उनमें हम आश्रय लेंगे, आज भी और करण युग से और आगे तक भी कितने लोग भगवान रक्षा किए। एक सच्ची घटना में सुनाता हूं, टाइम तो नहीं हुआ ना, तो कलकत्ता से एक फ्लाइट जा रहा था चेन्नई की ओर, तो उसमें एक महाराज बैठे थे, स्कंद के महाराज, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। तो बीच में वो फ्लाइट का, उस समय अभी तो डबल इंजन आ गया, उस समय एक इंजन का होता है, तो इंजन एक इंजन इंजन फेल हो गया। जब इंजन फेल हो गया सारे लोग देखे, और बाबा बैठा है एक लाल कपड़ा पहन के, अरे बाबा आप बताइए बचा, तो हाथ उठा दिया और कैप्टन ने हाथ उठा दिया। बोला आप अभी आप अपना अपना स्मरण करो, पहले तो सब आप जानते तो है भगवान को ऐसे नहीं करेंगे, तो जब ऐसे स्थितियां आती है तो अभी अभी आप अपना अपना सुरक्षा करो। तो वो बाबा के पास पहुंचे, बाबा आप कुछ बताओ कैसे। बाबा बोला, बाबा बोले अरे भाई आप क्यों इतना चिंता करते हो, भगवान नाम है, नाम चलो नाम करो, और भगवान का नाम कीर्तन दबा के, क्योंकि मरेंगे सब जानते हैं पूरा, और इतनी जोर से सब पूरा मन प्राण लगा करके भजन किए, पूरा जोरदार कीर्तन, और फलस्वरूप क्या हुआ, और वो फ्लाइट वो जो कैप्टन था वो तो हाथ उठा दिया सब कुछ पूरा, और कैसा, क्योंकि वो इंजन काम नहीं कर रहा, उनका स्टेयरिंग कुछ नहीं काम कर रहा, कोई सब कटअप। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, वो फ्लाइट आया धीरे 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 आया, एक खेत में जो पानी का खेत था, धान का खेत था, आराम से बैठ गया, कोई कुछ ये सच्ची घटना है, और सब लोग डोर को तोड़ करके आए और बाबा को उठा करके पकड़ करके नचाए, पूरी पूरा कीर्तन किए। तो ऐसे नहीं है, आज भी आप प्रेम से निष्ठापूर्वक, और ये बहुत सरल है, दूसरा कुछ चीज आपके पास रखने के लिए बहुत टाइम लगेगा और बहुत मतलब कारनामा करना पड़ेगा आपको सुरक्षा के लिए, लेकिन इस चीज को सुरक्षा के लिए आप नाम को तो रखो माइंड में। पिताजी बोलते नहीं नाम मत करो, अरे भाई उनके सामने नहीं करूंगा, भीतर तो करूंगा, लेकिन और कोई चीज, पिताजी बोले पिस्तल मत रखो, लेकिन पिस्तल कहाँ रखेंगे, ले जाएंगे, कोई चीज रख नहीं पाएगा, ऐसा चीज है आप रख नहीं पाएगा, लेकिन नाम तो आप रख सकते हैं ना, ऐसी चीज हमारा मन में हम लोग रख सकते हैं, तो इसलिए इसको हर समय रखिए, हर समय काम आने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं क्योंकि टाइम कोई प्रश्न हो और आशंका हो।
हरे कृष्णा प्रभुजी, प्रभुजी आपने बताया कि त्रियुग त्रिजयुग कहते हैं हम भगवान को, तीन युगों में भगवान प्रकट होते हैं, और जो है इस युग में हमारा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकट हुए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का हमें बताया। कल्कि अवतार के लिए आपने बताया कि वो अंश रूप है सिर्फ भगवान के, उसे पूर्ण अवतार नहीं कह सकते, तो जब हम परशुराम अवतार को जो है उनको तो हम पूर्ण अवतार मान रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं
पूर्ण अवतार नहीं, परशुराम पूर्ण अवतार नहीं, सत्यावश अवतार है।
अच्छा, तो मतलब इस जो बाकी अवतार हैं, जैसे जो दशम अवतार यहाँ पे पीछे पिक्चर्स में लगी थी पीछे, तो वो जो है वो उनको हम अवतार मानते हैं, और कल्कि अवतार को भी अवतार मानते हैं या क्या, मतलब उनको कल्कि अवतार को त्रिजभुज त्रिजयुग में तो नहीं आए कल्कि अवतार जी, अभी आएंगे कलयुग में आगे, हाँ, तो कैसे उसको समझा जाए बेसिकली?
आपका प्रश्न है कलयुग में तो कल्कि अवतार आते हैं, लेकिन फिर त्रिजयुग क्यों कहा गया है भगवान?
हाँ जी,
यही है ना क्वेश्चन?
यस प्रभुजी।
हाँ, इसके ऊपर आचार्य लोग खास करके रूप गोस्वामी ने लघुवागतमृत में इसका विशद वर्णन किए हैं, और मेरे पास तो यहाँ किताब नहीं है, लेकिन यही उन्होंने वर्णन किया है क्योंकि कलयुग में जो सारे अवतार, जैसे चैतन्य महाप्रभु का अवतार तो कुछ नहीं था, लेकिन आए छन अवतार। और इसलिए ऐसा नहीं है भगवान केवल इतनी इतनी अवतार है, भागवत में वर्णन किया गया है भगवान हर युग में आते हैं, लेकिन जो विशेष करके तीन युग में आते हैं इसलिए उनको तीन युग अवतार कहा गया है। आवश्यक पड़ने से भगवान आते हैं, समुद्र में जितना लहरी आता है ऐसा ही भगवान का अवतार है पूरी, लेकिन विशेष करके जो पूर्ण अवतार जो तीन युग में आते हैं, कली युग में आते हैं पूर्ण, इस ये बात को इसलिए उनको तीन युग कहा गया है। कुछ समझ में आया? हाँ, महाप्रभु पूर्ण अवतार लेकिन छन अवतार है, छुप के आए हैं, ऐसे छुप के। हाँ, प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये लीला अवतार है। हाँ, जो युवा अवतार वो आते हैं और सब ऐसे होते हैं।
हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि भगवान हमारे पिछले जन्म को, वर्तमान को और भविष्य को भी जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान सब जानते हैं। तो ये प्रश्न उठता है कई बार मन में कि जीव के पास कुछ स्वतंत्रता भी होती है और जीव अपने कर्मों को बदल सकता है, अपने भविष्य को बदल सकता है, तो भगवान अगर जानते हैं तो इस बात में कैसे समन्वय है कि हम अपने भक्ति के माध्यम से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। अगर भगवान पहले से भविष्य निर्धारित है, क्या भगवान ये बात कैसे समन्वय करें?
हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछे हैं। ये क्वेश्चन एक प्रभु जी मुझे एक जब मथुरा कोर्ट में गया था तो वो एक क्वेश्चन पूछा था वकीलों ने एडवोकेट में पूछा था जे आप बोल रहे जब हमारा निश्चित है, भगवान निश्चित कर दिया है, हमारा भाग्य निश्चित कर दिया गया है, तो फिर हम जो भी करें भाग्य तो निश्चित है। प्रभु जी बोले बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है तो मेरे मन में भगवान ऐसे दिए उसका आंसर, मैं जानता नहीं कितने कैसे आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं उनको बोला आप देखिए आपका मथुरा जुरिडिक्शन में कितनी हजार वकील है, 3000 वकील है, मतलब 3000 वकील, ये आपका पूरी भाग्य था, 3000 वकील बनेंगे, वकील ही बनेंगे, लेकिन 3000 वकील से फर्स्ट क्लास वकील कितने बने ना, जो महीना का तनख्वाह उनका 4,00,000 रुपया, तो बोले मात्र 10-15। मैं बोला बस यही है, समझिए हमारा सब लोग का था भाग्य हम भक्त बनेंगे, लेकिन बेस्ट भक्त ये कर्मों पर डिपेंड करता है। हम लोग अच्छा कर जो प्रभु जी बोले जो इंडिपेंडेंट दिए हैं हम, हाँ हम लोग तो आए हैं सारे लोग भक्त बने, भगवान ने कहा इतना आपका ये है बन गए, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उसको यूज करेंगे अच्छा से तो अच्छा वकील बनेंगे। और फिर केवल लॉ डिग्री क्या कॉपी करके लॉ पास करके आके टाई लगा के आया वकील बन गए और बस कुछ प्रैक्टिस नहीं किए, तो गधा गधा वकील भी है और ऐसे भी वकील है ना तो अच्छा वकील बनना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा ना। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में वकील भी जाते हैं, कितनी करोड़ करोड़ रुपया कमाते हैं, और भी बहुत वकील हैं वो बीड़ी फूंकते हैं उनका इतना मिलता नहीं, तो ऐसे ये डिपेंड करता है। ये तो हम लोग का भाग्य है हम सब बने भक्त, लेकिन चेतन चेतन में ये बात आती है जय भजे सही बड़ा अगर नहीं नचार, कृष्ण भजन नहीं जती कुलादी विचार। चेतन महाप्रभु बोलते हैं जो भजन करता है वही बड़ा है, ऐसा नहीं है हम ये कुल में जन्म हो गया उस कुल में जन्म हो गया इतना हमारा पिताजी इतना बड़े थे ये थे हम बड़ा हो जाएगा, नहीं आप भजन करेगा तो आप बड़ा होगा, जितने जो भजन ज्यादा करेगा वही बड़ा होगा, तो जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेगा वही बड़ा वकील होगा, वो भी उसका भी फीस तनख्वाह भी मोटा होगा। तो इसलिए ये चीज हमारा साधन में है, साधन करके कर सकते हैं। हरे कृष्ण। मेरे को थोड़ा सुनाई नहीं दिया क्या बोले, मालूम नहीं मैं ठीक से पकड़ा ना नहीं, अब सुनाई देने के लिए।
हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे चारों युगों में अलग अलग प्रोसेस बता रखे हैं, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में मूर्ति सेवन और कलयुग में हरिनाम। और जैसे भगवान का नाम तो ठीक है हर युग में है, तो फिर इस बात को कैसे समझे कि ये सतयुग का मंत्र है ये द्वापर का मंत्र है, क्योंकि मतलब नाम तो इस ओनली मतलब ये तो खाली कलयुग का है ना।
सारे तो नाम ही है, खाली नाम का क्रमण है, नाम तो सारे इसमें भी नाम है उसमें भी नाम है। ये आचार्य लोग और शास्त्र में इसका प्रमाण है, शास्त्र में लिखा हुआ है, ये मेरे मन से नहीं बोलता हूँ। आप देखना है तो भक्ति विनोद ठाकुर एक ग्रंथ लिखे हैं कृष्ण संहिता, तो उसमें कृष्ण संहिता में ये सारी चीज लिखा हुआ है। मेरे बहुत सालों से पहले मैं पढ़ा था, मेरा नहीं था यहाँ बोलने के लिए चार युग का नाम, लेकिन नाम ही है आपका क्वेश्चन है ना, नाम कैसे हम
अब हर युगों के अलग नाम है, तो फिर उस युग का प्रोसेस तो फिर मतलब सभी युगों का प्रोसेस तो फिर हरिनाम ही हो गया ना एक तरह से, अगर सभी युगों के अलग अलग नाम शास्त्रों
में। हर युग में कोई नाम का तो प्रभाव हर युग में है, हर युग में नाम का महिमा है, नाम का प्रभाव है, लेकिन युग धर्म अलग अलग प्रकार, जैसे तपस्या का महत्व दिया गया है अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार का कहा गया, लेकिन कोई हरिनाम करे तो रिजल्ट उसको मिलेगा। सत्ययुग में किए नाम कौन क्या था, सत्ययुग में नाम प्रहलाद महाराज, उसमें भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखे, आप किताब को पढ़िए बहुत सुंदर किताब है। तो प्रहलाद महाराज ने सत्ययुग में सारी संकीर्तन करवाया था और सबको पूरा भक्त बना दिया था, सत्ययुग का बात है। लेकिन सत्ययुग में ज्यादातर लोग उस चीज में ध्यान में रहते हैं, तपस्या में जुड़े रहते हैं। समझ नहीं आया ना,
हरिनाम तो हर युग में है,
हर युग में हरिनाम है, हर युग में कार्य करता है।
तो फिर एक एक युग का स्पेसिफिक मंत्र इसको कैसे समझे कि इस युग के लिए यही नाम है,
वही नाम उस युग के लिए वो इस नाम निर्धारित किया गया है, उसी नाम के हिसाब से। जैसे सतयुग के नारायण, नारायण पर आवेदा, तो नारायण ही सतयुग में जो आए हैं, जो आविर्भूत हुए हैं, जो लीला किए हैं, उसके हिसाब से मंत्र। यद्यपि सारे भगवान का नाम है, समझ नहीं है। हरे कृष्ण ग्रंथ ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रमानंदे।